Jai Radha Madhava Kunja Bihari.
यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम के स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 38 पर नई दिल्ली में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये लेक्चर श्री प्रभुपाद जी ने मायापुर में दिया था 1976 मार्च 16। और ये लेक्चर उन्होंने दिया था भागवतम के 7वें स्कंद के आधार पर। भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा प्राप्त होती है और ये भी प्रहलाद महाराज ने भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में। और आज का जो श्लोक प्रभुपाद जी ने जिस पर प्रवचन दिया था वो श्लोक का उच्चारण प्रहलाद महाराज जी कर रहे थे। प्रहलाद महाराज जी वैसे महाजन हैं और उनका सौभाग्य था कि जब वो माता के घर में थे उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। किसके द्वारा? नारद मुनि जी के द्वारा। तो प्रहलाद महाराज इस श्लोक में कह रहे थे कि हे भगवान, आप अपने आप को प्रकट करते हो अनेक रूपों में। भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसके लिए भगवान के अनेक नामों में एक नाम है अचिंत्य। तो भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि आप जो हो, आप अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट करते हो। आप पुरुष के रूप में आते हो, आप पशु के रूप में आते हो। भगवान के अनेक अवतार हैं पशु के रूप में, और भगवान का प्रसिद्ध अवतार है आधे पुरुष आधा मनुष्य के रूप में। आप संत के रूप में आते हो, आप देवता के रूप में आते हो, आप मछली के रूप में आते हो, छोटर्स के रूप में आते हो, और आप पूरी सृष्टि की देखभाल कर रहे हो, और जो असुर हैं उनका आप वध करते हो, और आप समय के अनुसार अवतारित होते हो धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। जैसे कि भगवान ने गीता के 4वें अध्याय में कहा है, परितनाया साधु नाम विनशिचत दुष्कृतम धर्म संस्था पनार्थाया संभवामी युगे युगे। कि मैं अलग अलग समय में अवतारित होता हूं, किस लिए? धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। तो इसी विषय का वर्णन कर रहे हैं प्रहलाद महाराज जी। वो कहते हैं कि आप प्रकट करते हो अपने आप को धर्म के नियमों की स्थापना के लिए और धर्म की सुरक्षा के लिए। पर कलयुग में आप जब अपने आप को प्रकट करोगे तो आप ये दावा नहीं करोगे कि आप स्वयं भगवान हो। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं आप अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हो, पशु के, मनुष्य के, देवता के, संत के, मछली के। पर कलयुग में जब आप प्रकट होगे तो आप ये दावा नहीं करोगे कि आप स्वयं भगवान हो। इसलिए भगवान के अनेक नामों में एक नाम है त्रियुग। कि है तो वैसे तो 4 युग हैं, क्या कौन से हैं? चार युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। बाकी युगों में भगवान ये दावा करते हैं, और इस युग में भगवान जब प्रकट होते हैं तो ये दावा नहीं करते, वो प्रकट होते हैं भक्त के रूप में। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि आप इस युग में जब अब प्रकट हो गए तो आप ये दावा नहीं करोगे कि आप स्वयं भगवान हो। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, छन्ना कलो यदवस्थ युगो सत्वम। छन्ना का अर्थ है ढकावा। तो आप इस युग में जब प्रकट हो गए तो आप ढके हुए हो गए या छुपे हुए। तो दूसरे शब्दों में इस युग में भी भगवान प्रकट होते हैं, पर वो ये दावा नहीं करते कि मैं स्वयं भगवान हूं। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि इस चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं। और जब लोग ये कहते थे कि आप क्या भगवान के अवतार हो, तो महाप्रभु जी क्या करते थे? अपने कानों को बंद कर देते थे और कहते थे नहीं नहीं नहीं, वो कभी स्वीकार करते ही नहीं थे कि वो भगवान है। तो आगे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भागवतम के 11वें स्कंध का वो प्रसिद्ध श्लोक जो है, कृष्ण वर्णम त्रिश कृष्ण संगोपस्त्र परिषदम यज्ञ संकृत प्राय जनते ही सुमेध रहा। आगे प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में 11वें स्कंध के उस श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें कि स्पष्ट कहा गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कलयुग में भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान का लक्षण क्या होगा इस कलयुग में? कि वो निरंतर अपने साथियों के समेत संकीर्तन आंदोलन में जुड़े रहेंगे। तो दूसरे शब्दों में, हालांकि इस कलयुग में भगवान महाप्रभु जी के रूप में छन्ना अवतार माने जाते हैं। छन्ना अवतार मतलब कि ढकावा अवतार। जब भी शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, वो स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण प्रभुपाद जी ने भी लेक्चर में कहा था, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्यत्। राधा और कृष्ण प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। जब महाप्रभु जी इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने दिव्य लक्षण भी प्रकट किए थे। आज के जमाने में कई व्यक्ति दावा करते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं, पर अवतार को आप पहचानते हो शास्त्रों के वर्णन के द्वारा। दूसरे शब्दों में, प्रमाण हमें प्राप्त होना चाहिए शास्त्रों में अवतार के विषय में। ये नहीं कि आप कहते हो आप अवतार हो, आपके शिष्य कहते हैं आप अवतार हो, तो आप अवतार हम आपको स्वीकार कर लेंगे। इस विषय में प्रमाण होना चाहिए। और महाप्रभु जी के विषय में अनेक श्लोकों द्वारा प्रमाण प्राप्त होता है वैदिक साहित्य में। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? स्वयं भगवान है। आज हम मना रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा का उत्सव। जगन्नाथ मिश्रा कौन थे? महाप्रभु के पिता। प्रभुपाद जी ने आज के दिन हवाई में लेक्चर दिया था, जगन्नाथ मिश्रा के उत्सव के दिन हवाई में प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था। तो प्रभुपाद जी ने हवाई में वो लेक्चर देते हुए कहा कि जब महाप्रभु जी प्रकट हुए थे तो जगन्नाथ मिश्रा, तो प्रभुपाद जी ने उस साल मार्च 4 को था गौर पूर्णिमा, और मार्च 5 को प्रभुपाद जी ने हवाई में लेक्चर दिया था। तो प्रभुपाद जी ने कहा उस लेक्चर में कि जगन्नाथ मिश्रा जो थे ब्राह्मण थे, ज्यादा धनी नहीं थे। जो ब्राह्मण विचार के व्यक्ति हैं वो धन के पीछे मोहित नहीं होते। प्रभुपाद जी ने वो लेक्चर में समझाया था कि समाज का विभाजन 4 वर्ण 4 आश्रम में होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मणों की तुलना की जाती है शरीर के सिर के साथ। जिस प्रकार सिर का होना आवश्यक है जीवित रहने के लिए, उसी प्रकार समाज में ब्राह्मणों का होना भी महत्वपूर्ण है। पर जो ब्राह्मण है, नाम के ब्राह्मण नहीं, असली ब्राह्मण, जो असली ब्राह्मण है वो धन के पीछे भागते नहीं। उनका भाव रहता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करें। तो जगन्नाथ मिश्रा वो बड़े प्रसन्न हुए थे जबकि निमाई ने जन्म लिया। जगन्नाथ जब निमाई अपने माता के गर्भ में थे तो सच्ची माता को दिव्य लक्षण दिख रहे थे और उन्हें पता था कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। पर तो जगन्नाथ मिश्रा बहुत ही खुश हुए जब निमाई ने जन्म लिया, और उस खुशी में आज के दिन उन्होंने नवद्वीप में एक बहुत ही बड़े भंडारे का प्रबंध किया, जिसमें कि समाज के लोगों को उन्होंने निमंत्रण देकर सबको भोजन खिलाया। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो उस समय उनके पिता वासुदेव जेल खाने में थे, पर उन्होंने अपने मन ही मन में हजारों गायें जो सजी हुई थी गहनों के साथ ब्राह्मणों को बांट दी। तो ये रिवाज था कि इस प्रकार के शुभ अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन दिया जाए इत्यादि। वो आगे प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में समझाते हैं कि अनेक प्रकार के फिलॉसफीज हैं, और खास करके प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचन में बुद्धिस्ट फिलॉसफी का वर्णन किया है। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु जी की फिलॉसफी है, दिस इज सुपर फिलॉसफी। प्रभुपाद यूजेस द वर्ड सुपर फिलॉसफी, मतलब कि अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, पर महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है ये सब सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है और इसे समझना कुछ कठिन नहीं। प्रभुपाद जी ने अनेक समय ये शिक्षा दी है कि महाप्रभु जी की शिक्षा में और कृष्ण भगवान की शिक्षा में कोई अंतर नहीं। महाप्रभु जी प्रकट होते ही अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को समाज में स्थापित करना शुरू कर दिया था। जैसे कि आप जानते हो, वो रोना बंद करते थे कब, जबकि पड़ोस की औरतें क्या हरि नाम का उच्चारण करती थी। महाप्रभु जी प्रकट हुए थे इस युग के धर्म की स्थापना के लिए। क्या है इस युग में धर्म? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, खलो नस्तेव 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 एव गति अन्यथा। हरे का नाम, हरे का नाम, हरे का नाम। श्रीमद् भागवत में आप पढ़ते हो कि परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि ये बताइए कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। भगवान के जो भक्त हैं वो समाज का लाभ चाहते हैं, समाज के शुभ चिंतक हैं, और इसलिए उनकी सदा ये चिंता रहती है कि समाज का सुधार कैसे हो। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ये बात सत्य है कि कलयुग में दोष ही दोष है, कले दोषे निज राजन। हे राजा, कलयुग में दोष ही दोष है, एक गुण है इस कलयुग में। क्या है वो एक गुण? कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संघस परम जन। इस युग का मूल गुण ये है कि इस युग में आपके पास क्या है? ये हरि नाम। इसी विषय पर भागवत में कहा गया है, कृतय अध्याय तो विष्णु त्रेतयो यजतो मुखे द्वापरे प्रचयारम कलो तधारी कीर्तन। कि इस कलयुग में हरि नाम के उच्चारण के माध्यम के द्वारा आपको वही लाभ आ सकता है जो कि सतयुग में प्राप्त होता था भगवान का चिंतन करके, त्रेता युग में प्राप्त होता था बड़े बड़े यज्ञ करके, द्वापर युग में प्राप्त होता था भगवान के मंदिरों में महंगे रूप में भेंट अर्पण करके, वही लाभ आपको इस कलयुग में प्राप्त हो सकता है किस माध्यम से, हरि नाम के उच्चारण से। तो महाप्रभु जी की जो शिक्षा है इसका प्रमाण आपको शास्त्र में भी प्राप्त होता है। महाप्रभु जी क्योंकि स्वयं भगवान हैं, उनकी भविष्यवाणी थी पृथ्वी आचे जद नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार ओय बे मोर नाम। एक दिन ये हरि नाम जो है विश्व के कोने कोने में पहुंचेगा। कुछ साल पहले मैं कई गौड़िया वैष्णव से चर्चा कर रहा था और ये गौड़िया वैष्णव मुझे कह रहे थे कि 40 साल पहले तक वो भी सोच रहे थे कि महाप्रभु जी की भविष्यवाणी सत्य नहीं निकलेगी। जो गौड़िया वैष्णव थे वो सोच रहे थे ये बात सत्य है कि महाप्रभु जी की भविष्यवाणी है, पर कलयुग इतना गहरा हो गया है कि भविष्यवाणी से सत्य नहीं निकलेगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने भी प्रयास किया था, चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों को भेजा था जर्मनी इंग्लैंड प्रचार के लिए, पर वो इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और वापस भारत लौट आए। तो गौड़िया वैष्णव सोच रहे थे कि महाप्रभु जी की भविष्यवाणी कि हरि नाम विश्व के कोने कोने में पहुंचेगा शायद इस युग में सफल नहीं हो पाए, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूरा पूरा विश्वास था। शिल प्रभुपाद उनके प्रिय शिष्य उन्हें पूरा विश्वास था कि महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं और ये भविष्यवाणी सत्य जरूर निकलेगी। महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं और जब पृथ्वी पर थे उन्होंने अपना दिव्य रूप भी प्रकट किया, हालांकि वो छुपे हुए अवतार हैं, ढके हुए अवतार हैं, जब भी उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को भी प्रकट किया। उदाहरण के लिए जब वो छोटे से ही थे तो एक समय एक ब्राह्मण अतिथि उनके घर में आए थे रहने के लिए, जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की इच्छा रहती है सब ब्राह्मणों की सेवा करें। तो जगन्नाथ मिश्रा के कहने पर ब्राह्मण ने अपना भोजन तैयार किया खाने के लिए। भक्तों का विश्वास है खाओ तो पहले भगवान को भोग लगाओ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं भोग लगाए बगैर खाओगे तो क्या खा रहे हो पाप, और भोग अर्पण करके खाओगे तो खा रहे हो प्रसाद। तो ब्राह्मण जो हैं अक्सर अपना सारा कार्य खुद ही करते हैं, यानी नौकर चाकर। तो इस ब्राह्मण ने अपना भोजन तैयार किया और भगवान को भोग लगा रहे थे कि शैतान निमाई ने आकर उस भोग को झूठा कर दिया। झूठा कर दिया तो भगवान को आप थोड़ी लगा सकते हो। तो ब्राह्मण ने सोचा शायद भगवान की इच्छा है मैं आज भूखा सो जाऊं। जगन्नाथ मिश्रा ने कहा नहीं, आप हमारे मेहमान हो, ये हमारी बेइज्जती होगी अगर आप भूखा सो। तो जगन्नाथ मिश्रा के कहने पर फिर से ब्राह्मण ने भोजन तैयार किया। दूसरी बार जब भोग अर्पण कर रहे थे फिर से निमाई पहुंच गया, फिर से झूठा कर दिया। तो जब दूसरी बार झूठा कर दिया प्रसाद को, जगन्नाथ मिश्रा बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपने बेटे को डांटा और कमरे के अंदर बंद कर दिया दूरी पर। और विश्वरूप जो निमाई के बड़े भाई थे और महाप्रभु जी के कहने पर उस ब्राह्मण ने तीसरी बार फिर से अपना भोजन तैयार किया। लगभग आधी रात हो गई थी, घर के सारे सदस्य सो गए थे और जब ब्राह्मण फिर से भोग लगा रहा था तो निमाई फिर से वहां पहुंच गए। जब तीसरी बार ब्राह्मण ने उस निमाई का दर्शन लिया तो कहा फिर से पहुंच गए, तुम्हारे पिता ने तो कहा था कि तुम्हें दूरी पर बंद कर दिया है कमरे के अंदर। तो निमाई ने कहा अरे भाई आप घबराते क्यों हो, ये भोग तो मुझे तो लगा रहे हो। तो विष्णु विष्णु विष्णु, ये देखो ये लड़का कहता कि मैं भगवान हूं। भगवान निमाई ने कहा तो मुझे तो भोग लगा रहे हो तो इसमें घबराने की क्या बात। तो जब उस ब्राह्मण ने कहा विष्णु विष्णु विष्णु, देखो उसने कान अपने बंद कर दिए। कभी आप भगवान के विरोध की बात सुनते हो तो कान बंद कर देते हो। निमाई ने अपने श्याम सुंदर का रूप प्रकट किया उस ब्राह्मण को। और जब उन्होंने उस श्याम सुंदर का रूप प्रकट किया वो ब्राह्मण बेहोश हो गया। ब्राह्मण ने कहा ये तो सच है, तुम ही हो कृष्ण। हाँ, और फिर भगवान ने कहा हर जन्म में तुम मेरे साथ ही रहते हो। और फिर भगवान ने उस ब्राह्मण को एक आदेश दिया, उन्होंने कहा कि तुमने किसी को नहीं कहना कि तुमने ये रूप मेरा देखा है। तो ब्राह्मण के सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी। एक तरफ से उन्हें बिना शंका के पता था कि स्वयं भगवान है, दूसरी तरफ से आदेश था कि किसी को ये दिव्य ज्ञान नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा और उनके साथियों को पता लग जाता कि ये स्वयं भगवान है तो लीला का आनंद ही समाप्त हो जाता। तो भगवान अपनी योगमय शक्ति द्वारा अपने भक्तों को भ्रम में रखते हैं। यशोदा माता को अगर पता होता कि ये स्वयं भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण, तो उनके मन में कुछ भय नहीं रहता। यशोदा माता को सदा चिंता रहती थी कहीं कोई राक्षस आकर मेरे बेटे को मार तो नहीं देगा, क्योंकि पूतना आए, तृणावर्त आए, अनेक राक्षस आए। तो उनके मन में सदा ये चिंता थी कि अगर मैं अपने बेटे के लिए भोजन नहीं तैयार करूंगी तो मेरा बेटा भूखा रहेगा। पर अगर उन्हें पता होता कि स्वयं भगवान है तो चिंता रहित रहती। तो उसी प्रकार जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता, उन्हें शक था कि मेरा बेटा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है। जैसे कि जब यशोदा माता अपने बेटे को दूध पिला रही थी तो उन्होंने देखा उनके पैरों के नीचे वो दिव्य लक्षण, शंखा, गदा, झंडा, मछली। उन्होंने कहा अरे ये लक्षण। फिर एक समय जब भगवान ने चलना शुरू किया था तो ये दिव्य लक्षण पृथ्वी पर आ गए थे। और तो माता ने देखा तो माता ने सोचा शायद हमारे घर के जो विग्रह हैं उन्होंने चलना शुरू कर दिया है और ये उनके लक्षण दिख रहे हैं। फिर उन्हें पता लगा कि नहीं नहीं वो तो हिले ही नहीं। तो माता को शक होने लग गया था कि मेरा बेटा देवता है, साथ में उनके पिता नीलम्बरा चक्रवर्ती उस समय के सबसे प्रसिद्ध जोशी थे। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो हम जन्मपत्री बनाते हैं, तो नीलम्बरा चक्रवर्ती ने जब उनकी जन्मपत्री बनाई उन्होंने कहा ये जो लड़का है ये पूरी सृष्टि को संभालेगा, इसके लिए उनका एक नाम क्या है, विश्वम्बर। तो ये नहीं कि महाप्रभु जी गुप्त अवतार थे और उन्होंने कभी भी अपने दिव्य लक्षण प्रकट नहीं किए। उन्होंने किए जैसे कि उस ब्राह्मण को अपना दिव्य रूप बताया। फिर अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य हैं महाविष्णु के अवतार। फिर अद्वैताचार्य को भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन दिया था, वही विराट रूप का दर्शन जो कि भगवान ने अर्जुन को दिया था, कहा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय। उसी प्रकार का विराट रूप का दर्शन भगवान ने दिया अद्वैताचार्य को। कुछ समय पहले मैं एक सभा में गया था बोलने के लिए, तो एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, जो कह रहे थे तुम लोग क्यों कहते हो एक ही कृष्णा, हम सब कृष्णा हैं। तो मैंने कहा अगर हम सब कृष्णा हैं तो हमें भी उनकी अद्भुत लीला की तुलना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, आप भी क्या उठा सकते हो, हम आपको भी कृष्णा मान लेंगे। कहता है अभी तक नहीं उठाया तो ये मतलब नहीं कि भविष्य में नहीं उठा पाएंगे। तो मैंने कहा तो आपको कितने साल दें, 30 साल 40 साल उसमें लिख के दो कि आप जरूर उठा लोगे। तो महाचैतन्य महाप्रभु जी हालांकि छुपे हुए अवतार थे पर उन्होंने अपने दिव्य रूप को भी प्रकट किया, अद्वैताचार्य को अपना विराट रूप का दर्शन दिया। फिर एक और समय भगवान ने अपने महाप्रकाश रूप को प्रकट किया था श्रीवास पंडित के घर में, और उस समय उन्होंने यह महाप्रकाश का रूप प्रकट किया था 21 घंटों के लिए लगातार, 21 घंटों के लिए केवल 5 प्रसिद्ध प्रिय भक्तों को, और जिनमें एक थे कुलभूषण श्रीधर नित्यानंद इत्यादि। फिर सर्वभूमाचार्य जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध मायावादी प्रचारक थे, वो बृहस्पति के अवतार हैं, उन्हें भी उन्होंने अपना सद्भुज का रूप प्रकट किया था। सद्भुज का रूप है 6 हाथों का रूप, 2 हाथ थे रामचंद्र के, 2 भगवान कृष्ण के, 2 चैतन्य महाप्रभु के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चैतन्य महाप्रभु जी हालांकि आज के इस श्लोक के अनुसार छुपे हुए अवतार हैं, जब भी वो स्वयं कौन है, स्वयं भगवान है। और हम भगवान के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं, कई लोग कहेंगे अरे ये हरे कृष्ण वाले सेंटिमेंटलिस्ट हैं, ये लोग ऐसे चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करें। नहीं, इसका प्रमाण है शास्त्रों में, इसका प्रमाण शास्त्र में है। और चैतन्य महाप्रभु जी जब आए थे उन्होंने दिव्य लीला भी प्रकट की थी, और आज आप देख भी सकते हो उनका जो संदेश था उसका हम सब उपयोग करते हैं। तो संक्षेप में क्या है चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इन लोगों का सौभाग्य था कि उन्हें महाप्रभु द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे तो से सनातन और रूप को मंजारियों का अवतार माना जाता है। मंजारी उसे कहते हैं जो गोपियों का सहयोग देती हैं, राधे, और गोपियां कौन हैं, जो राधा रानी जी का सहयोग देती है कृष्ण की सेवा में। तो रूप गोस्वामी जी ने पहले अपनी सरकारी नौकरी त्यागी, जब उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। आजकल तो आप करेंसी इस्तेमाल करते हो, दिन पे दिन नोट पेपर का कागज भी पतला होते जाता है, और दिन पे दिन जो कॉइन्स हैं उसका मेटालिक कंटेंट भी हल्का होते जाता है ना। और प्राचीन समय में था क्या साधन, सोने के सिक्के, पूरे नाव सोने के सिक्कों से भर गई थी। और उन्होंने उदाहरण दिया कि इस प्रकार हमें सामने अपनी संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने 50% संपत्ति ब्राह्मणों को बांटी, जो शुद्ध ब्राह्मण हैं उतना ही स्वीकार करना चाहते हैं जितना आवश्यक हो, उसे अधिक नहीं। जैसे एक समय रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर पूछा भागो कितना धन चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, ब्राह्मणों ने कहा उतना ही दीजिए जितना आवश्यक है उससे अधिक नहीं। एक समय सीता देवी जी ने अपने सारे गहने बांट दिया था ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों ने स्वीकार किया फिर वापस लौटा दिया सीता देवी को। आज के ब्राह्मणों को आप सोना चांदी बांटोगे वो वापस करेंगे कभी नहीं, आज के ब्राह्मणों को पूछोगे कितनी जमीन चाहिए, तो सब आगे 10 पीढ़ी का योजना बनाते मांगेंगे, है ना। पर इन ब्राह्मणों ने कहा हमें उतना ही दो जितना कि आवश्यक है, वैसे नहीं ज्यादा नहीं। तो इन्होंने रूप गोस्वामी ने 50% संपत्ति बांट दी ब्राह्मणों को, 25% उन्होंने रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, आगे 25% उन्होंने बांटा रिश्तेदारों। तो प्रयाग में महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दी और रूप गोस्वामी को आदेश दिया कि अब जाइए वृंदावन में, आज जब आप वृंदावन जाते हो आप बड़े आसानी से पहचान लेते हो ये स्थान में क्या लीला बीती, ये स्थान में क्या बीती, ये स्थान में क्या बीती है कि नहीं। आज जब आप नवद्वीप परिक्रमा में जाते हो आप बड़े आसानी से पहचान लेते हो ये स्थान में क्या लीला बीती, ये स्थान में क्या बीती, ये स्थान में क्या बीती है कि नहीं। पर ये हमारा सहयोग किसने दिया? नवद्वीप परिक्रमा के विषय में महानाचार्य ठाकुर भक्तिनाथ जी रिटायरमेंट के बाद गए, उन्होंने पूरे नवद्वीप धाम में यात्रा की और उन स्थानों को खोजा जहां की महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। इसलिए आज हम कह सकते हैं आज ये लीला यहां बीती थी, ये लीला यहां बीती थी। उसी प्रकार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, महाप्रभु जी ने उन्हें भेजा था वृंदावन में उन स्थानों की स्थापना के लिए जहां के भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। तो आज हमारा आभार है इनके प्रति, क्योंकि इनके प्रयास से आज हम पहचान सकते हैं भगवान की कौन सी दिव्य लीला किस स्थान में बीती थी। तो रूप गोस्वामी को दिव्य ज्ञान मिला था महाप्रभु जी के द्वारा और सनातन गोस्वामी को भी दिव्य ज्ञान मिला चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा। सनातन गोस्वामी ने अपने राजा नवाब हुसैन शाह को सूचना भेजी कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं दफ्तर नहीं आ सकता। रूप गोस्वामी ने जब अपनी नौकरी त्यागी तो राजा को बहुत क्रोध आ गया था, क्योंकि राजा निर्भर था शासन के लिए इन दो भाइयों के ऊपर। तो जब रूप गोस्वामी ने नौकरी त्यागी तो राजा पर बोझा जो है वो बढ़ गया। तो सनातन गोस्वामी ने जब सूचना भेजी कि मैं बीमार हूं तो राजा को शक हो गया। राजा ने कहा ये बीमार कैसे हो गया। तो राजा ने अपने, और राजा को जाना था उड़ीसा युद्ध करने के लिए, उड़ीसा में था हिंदू राजा प्रतापुद्रा। तो राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा देखने के लिए सनातन गोस्वामी की कितनी गहरी बीमारी है। आज के जमाने में अगर कोई आपका घर आना चाहे तो आपको घंटी बजाना पड़ता है ना, फिर वो व्यक्ति पूछता है कौन है, और आप अपना नाम बता दिया तो वो नहीं चाहता अंदर आओ तो जवाब ही नहीं देता है ना। जैसे आपके सेल फोन्स में आप देख लेते हो कौन फोन कर रहा है, तो अगर किसका आपने कर्जा देना है और वो फोन कर रहा है आपको पैसा लुटाओ तो आप जवाब ही नहीं देते हैं कि नहीं। तो उन दिनों में ये सुविधा नहीं थी। जब हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर घर घर जाते हैं तो कई लोग देखते हैं अरे ये हरे कृष्णा वाले आ गए किताब बेचने के लिए, तो दरवाजा ही नहीं खोलते। और कई लोग कहते हैं वो हरे कृष्णा वाले आए किताब बेचने के लिए, आओ आओ उनका स्वागत करो, हमारे अपवित्र घर को पवित्र बनाने के आए हैं। तो चैतन्य सनातन गोस्वामी के पास जब वो डॉक्टर था वो सीधा एकदम कमरे के अंदर आ गया। जब वो कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि सनातन गोस्वामी बैठे हैं 30 ब्राह्मणों के साथ और उनके सामने ग्रंथों का सारे ग्रंथ उपस्थित है। तो उन्होंने देखा कि ये सनातन गोस्वामी तो बीमार तो नहीं, पर ये तो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है ब्राह्मणों के साथ। तो सनातन डॉक्टर ने जाकर राजा को कहा आपका प्रधानमंत्री आपको गलत सूचना दे रहा है, वो तो ब्राह्मणों के साथ शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, स्वास्थ्य ठीक है। तो राजा ने निमंत्रण दिया सनातन गोस्वामी को। राजा ने कहा देखो तुम्हारा भाई रूपा वो लफंगे जैसे उसने अपनी जिम्मेदारी की नौकरी छोड़ दी, अब तुम भी उसके जैसे लफंगे बन रहे हो, आओ शासन को संभालो। सनातन ने कहा, अब तो मेरे लिए ये कार्य असंभव है, अब तो मैं नहीं आ सकता, मेरी रुचि है शास्त्रों के अध्ययन में। ठीक है, तो मैं जेल में डाल देते हैं। तो राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, डाल दो सनातन को जेल में। आजकल तो आप अपील कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, उन दिनों में मुसलमान राजा थे, कोई लॉयर कोर्ट में जाने का संभावना ही नहीं थी। तो राजा ने सनातन को जेल में डाल दिया। फिर जब जेल में डाला तो सनातन ने, जो जेल कीपर था वो था मुसलमान, उसको कहा कि मैं मक्का जाना चाहता हूँ, मक्का, हाँ वृंदावन नहीं, मक्का, मक्का जाना चाहता हूँ यज्ञ के लिए, क्या या मैं मक्का जाना चाहता हूँ। और थोड़ी रकम थी उनके पास, ये आप ले लो। वो जेलर ने कहा, अरे भाई तुम इतने प्रसिद्ध कैदी हो, अगर तुमको मैं छोड़ूंगा तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सनातन ने कहा, कह देना कि मैं पेट साफ करने गया था बाहर, फिर मैंने छलांग मार दी नदी में। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुश्किल है। फिर उसी समय सनातन को एक पत्र आ गया उसके भाई का कि मैंने तुम्हारे लिए इतना धन रखा है बनिए की दुकान में। तो उन दिनों में बैंक वगैरह नहीं थे, बनिए की दुकान में शायद संपत्ति लोग रखते थे। तो फिर सनातन ने पब्लिक लेक्चर में तो नहीं कहना चाहिए, पर यहाँ सब भक्ति बैठे हैं तो ठीक है। तो सनातन ने फिर उस कैदी को कहा और संपत्ति का लालच दिया, फिर भी वो नहीं माना। फिर इसने कहा, ये लो इतनी संपत्ति बख्शीस के रूप में। जब उस मुसलमान जेलर ने इतनी बड़ी रकम देखी तो उसने उसको छोड़ दिया। फिर सनातन जेल से निकले और एक सहयोगी ईशान को साथ लेकर छुपते छुपते निकले वाराणसी की ओर, क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु जी वाराणसी में चंद्रशेखर आचार्य के घर में विश्राम कर रहे थे। तो निकले छुपे छुप कर, रास्ते में वो रुके एक किसी धनी व्यक्ति के घर में। उस व्यक्ति के पास एक जोशी था रिसेप्शन में, जैसे हमारा रिसेप्शन है गेस्ट हाउस में, हमें भी एक जोशी रखना चाहिए वहां। तो उसने एक जोशी रखा था। वो जोशी पहचान लेता था ये जो अतिथि आ रहा है उसके पास कितना धन है। तो ईशान जो था उसके पास 8 सोने के सिक्के थे, पर उसने सनातन गोस्वामी को नहीं बताया था, चोरी चोरी रख रहा था अपने पास। तो उस जोशी ने अतिथि घर के मालिक को कहा, ये अतिथि बड़ा धनी व्यक्ति है। तो होटल का मालिक बड़ी अच्छी तरह खातिर कर रहा था सनातन की खुशामद, आगे पीछे भाग रहा था उसके। तो सनातन समझ गए कि जरूर इसे चाहिए, अगर कोई आपकी खुशामद करे ज्यादा तो आपको शक नहीं हो जाता इसको कुछ चाहिए होगा। तो सनातन ने अपने नौकर से पूछा, तुमको धन तो नहीं उठा रहे साथ, क्योंकि सनातन राजनीतिक कार्यों में होशियार थे। तो उस नौकर ने कहा, मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं, थे 8। फिर से झूठ बोल दिया, पहले तो छुपाया 8, फिर छुपाया 8 का 7 बना दिया। सनातन ने कहा, तुम इस धन को अपने साथ क्यों रख रहे हो, ये धन मृत्यु का कारण बनेगा। सनातन ने वो 7 सोने के सिक्के लिए और जो अतिथि घर का मालिक था उसे कहा, आप ये ले लो। अतिथि घर के मालिक ने कहा, आपके पास 8 सिक्के होने चाहिए, 7 नहीं, इतना एक्यूरेट था उनका जोशी। और उन्होंने कहा, जब सनातन ने उनको 7 सोने के सिक्के दिए तो अतिथि घर का मालिक शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, आप मुझे ये दे रहे हो, मैं आपसे नहीं ले सकता। सनातन ने कहा, आप नहीं लोगे तो कोई मार कर मुझे ले लेगा। अतिथि घर के मालिक ने कहा, मैं आज रात को तुम्हें मारने वाला था, तुमने मुझे पाप से बचा दिया, ये संपत्ति खुद ही मुझे वापस लौट कर। वो क्योंकि अतिथि घर का मालिक उनको मारने वाला था वो धन छीनने के लिए। फिर सनातन ने जबरदस्ती और रिश्वत वो 7 सोने के सिक्के दे दिए और ईशान को उन्होंने वापस भेज दिया, क्योंकि ईशान ने 2 दफा झूठ बोला था। और सनातन अकेले गए बनारस की ओर। रास्ते में उन्हें श्रीकांत के घर में रुकना पड़ा। श्रीकांत उनके बनौई थे, जो कि 3 लाख सोने के सिक्के लेकर आए थे राजा के लिए घोड़े खरीदने के लिए। तो श्रीकांत ने देखा उनका बनौई सनातन दाढ़ी वाड़ी उगाए हुए, गंदे कपड़े पहनकर छुप छुप कर जा रहे थे, क्योंकि सनातन को भय था अगर राजा ने देख लिया या राजा को सूचना पहुंच गई कि सनातन जा रहा है तो उसको एकदम गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर छुप छुप कर वो निकल रहे थे तो श्रीकांत ने कहा, ये क्या, तुम आओ मेरे पास रहो, मैं तुम्हें धन दूंगा। पर श्रीकांत ने एक बहुत महंगी चादर दी सनातन को ओढ़ने के लिए, और सनातन वहां से निकले और फिर पहुंचे वाराणसी में। वाराणसी में उस समय चैतन्य महाप्रभु जी चंद्रशेखर आचार्य के घर में थे। चैतन्य महाप्रभु जी तो अंतर्यामी हैं, तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर आचार्य को, बाहर एक संत खड़ा है, उसे जाकर अंदर बुलाओ। जब चंद्रशेखर आचार्य बाहर आए, उन्होंने देखा उनको तो कोई संत दिखाई नहीं, उन्हें एक व्यक्ति दिखा था दाढ़ी वाला। तो उन्होंने सोचा ये तो कोई मुल्ला है। तो उन्होंने महाप्रभु को कहा कि नहीं, बाहर तो कोई संत नहीं दिख रहा मुझे। महाप्रभु ने कहा, फिर से जाओ देखो। फिर वो लौटे, कहने लगे, नहीं नहीं कोई संत नहीं है, एक मुल्ला है दाढ़ी वाला बस। तो महाप्रभु ने कहा, वो मुल्ला नहीं है, बुलाओ उसे। वो जैसे उसे अंदर बुलाया, महाप्रभु जी उसे गले मिले। जब महाप्रभु जी उसे गले मिले, बड़े प्रेम के साथ, जैसे पुराने साथी मिलते हैं, तो चंद्रशेखर आचार्य ये स्नेह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कितना ये दो का खास लगाव होगा, जो महाप्रभु जी परम भगवान स्वयं गले लगा रहे हैं। फिर सनातन ने देखा कि महाप्रभु जी उनकी जो महंगी चादर जो कि वो ओढ़ रहे थे, जो कि श्रीकांत ने दी थी, वो बार बार घूर रहे हैं, जैसे कभी आप किसको मिलने जाओ कोई घूरता है आपके ऊपर। या तो सनातन समझ गए कि महाप्रभु जी उसकी महंगी चादर से खुश नहीं है। तो सनातन गए गंगा के किनारे, वहां एक बूढ़ा यात्री था, बूढ़ा व्यक्ति। उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक फटी हुई चादर थी। तो सनातन ने कहा, हे संत महात्मा, आप मुझे अपनी फटी हुई चादर दे दो और मैं बदले में आपको ये महंगी चादर देता हूं। उसने कहा, आप क्या मेरी हंसी उड़ा रहे हो क्या, तुम ये फटी हुई चादर के बदले में महंगी हुई चादर दोगे? हाँ हाँ, आई एम सीरियस, मैं गंभीर हूं, मैं मखौल नहीं कर रहा। तो अंत में सनातन ने उपटी हुई चादर को ओढ़ कर वो आए किसके समक्ष? महाप्रभु जी के समक्ष। जब महाप्रभु जी ने देखा कि वो फटी हुई चादर ओढ़ कर आए हैं महंगी चादर के बदले में, तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने कहा, जो हम भक्तों के लिए ये बड़ा लाभदारी उपदेश है। महाप्रभु ने कहा एक अच्छा डॉक्टर एक मरीज का इलाज करके, एक बीमारी का इलाज करके जो बीमारी का कारण है उसे नहीं रहने देता है कि नहीं। अगर आप बीमारी का इलाज कर रहे हो और बीमारी का जो कारण है वो रहने दो तो फिर क्या फायदा। तो महाप्रभु कह रहे थे कि जब हम आध्यात्मिक जीवन में खास करके त्याग का जीवन स्वीकार करते हैं तो हमें सादा जीवन बिताना चाहिए, सादे वस्त्र ग्रहण करने चाहिए। ये नहीं अपनी उंगलियों में सोने के ये पहनो, गहने मोतियां पहनो, ये पहनो वो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी। क्या दी शिक्षा? उन्होंने कहा ब्रह्मांड ब्रह्मीते कोनो भगवानो जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कि अनेक जन्म मृत्यु के बाद वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। क्योंकि हमने आपको कहा था, प्रभुपाद ने कहा कि महाप्रभु फिलॉसफी सुपर फिलॉसफी। तो क्या है ये सुपर फिलॉसफी, उस संक्षेप में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात 84 लाख योनियां हैं। हम जल की योनि में गुजर चुके हैं, स्थावर योनि में गुजर चुके हैं, कीड़े की योनि में गुजर चुके हैं, पक्षी की योनि में गुजर चुके हैं, पशु की योनि में गुजर चुके हैं, और अब कहाँ है? मनुष्य योनि में। तो मनुष्य योनि में भी जो भाग्यशाली व्यक्ति है वो ही उसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भक्ति का बीज का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भक्ति के महत्व का ज्ञान। जैसे आप जब ग्रंथों का वितरण करते हो या आप किसी को प्रचार करते हो तो भक्ति के महत्व का ज्ञान आप देते हो लोगों को। तो जब ये भक्ति के महत्व का ज्ञान आपको प्राप्त होता है, आपके पास ये छूट है क्या कि आप इसका लाभ उठा सकते हो या इसे करा सकते हो, है कि नहीं। आप सबको हाथ जोड़कर कहते हो हरि नाम का जाप करो, कई स्वीकार करते हैं, कई हंसते हैं, कई ठुकराते हैं। तो वो कहते हैं ये जो भक्ति का बीज है ये उगेगा, ये केवल जब उगेगा जब आप इसको पानी पिलाओगे। जैसे साधारण माली जानता है बीज उगता है जब आप उसे पानी पिलाते हो। तो पानी पिलाने का माध्यम क्या है? श्रवणम और कीर्तनम, ये है पानी पिलाने का माध्यम। भगवान के नाम लेना, भगवान के नाम सुनना। महाप्रभु जी ने कहा है कि हमें एक ही चीज की भीख मांगनी चाहिए, क्या है वो? हरि नाम। ठाकुर भक्तिनाथ जी कहते हैं एक प्रार्थना में आमी बिना बंधु आरे के आचे, तुम्हारा तुम्हारा असली मित्र कौन है? सिर्फ एक ही तुम्हारा मित्र है, और कौन है वो, क्या है उनका नाम? गौरांगा। गौर चैतन्य महाप्रभु जी आपके असली मित्र हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भक्ति का बीज उगेगा अगर आप इस भक्ति के बीज को पानी पिलाओगे श्रवणम कीर्तनम के द्वारा। तो श्रवणम कीर्तनम ये माध्यम है जिसके द्वारा भक्ति का बीज जो है ये उगता है। अगर हम भक्ति के मार्ग में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम नियमित रूप से महामंत्र का उच्चारण करें, नियमित रूप से महामंत्र को सावधानी से सुने, तो ये भक्ति का जो बीज है ये उगेगा। आगे महाप्रभु ने कहा कि जैसे कि आप ये हरे कृष्ण लैंड में देखते हो, हमने चारों तरफ दीवारें बनाई हुई हैं, है ना। क्यों दीवारें बनाई हैं? क्यों क्यों बनाई है दीवार? कि कोई गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ जाए, है ना। आपकी खेती होती है तो खेती में भी लोग फेंसिंग लगाते हैं, क्यों कि पड़ोस के पशु अंदर नहीं आ जाए घास खाने के लिए, कोई गलत व्यक्ति नहीं आ जाए। तो इसी प्रकार महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी जी से कि हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए, साधु संगत, साधु संगत, साधु संगत सर्वशास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संगत सर्व सिद्धि हया, सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है साधु संगत के द्वारा। साधु संगत के द्वारा अगर आप गलती भी करोगे तो साधु लोग आपको सुधार देंगे। कई बार हम साधुओं की संगत से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को सुधारना नहीं चाहते। कई लोग जाप के वक्त अंधेरे में जाते हैं जाप करने, क्यों? क्योंकि वहाँ जब सो भी जाएंगे कोई उठाएगा नहीं। मंदिर में जाप करेंगे तो जब नींद आ रही है तो कोई उठा देगा। अकेले एकांत में जाएंगे जाप करने तो वहाँ सोते रहोगे कोई उठाएगा नहीं। तो कई बार हम साधु संगत से बचते हैं पर उसका लक्षण उसका अर्थ क्या है, हम परिवर्तन नहीं करना चाहते। जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो एक पल के लिए भी भक्तों की संगत से दूर नहीं रहना चाहते। तो महाप्रभु ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि ये भक्ति का बीज उगे तो हमें क्या करना चाहिए, शरणम कीर्तनम के साथ अपने आप को साधु संगत में रखना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कई बार भक्ति का बीज उगते उगते अनवांटेड वीड्स भी उग जाती हैं। उदाहरण क्या है, हम सोचते हैं हम भक्त बन गए, दीक्षित हो गए, ब्राह्मण बन गए, अब हम इतने बड़े व्यक्ति बन गए, बहुत बड़े आदमी हम बन गए हैं, अब हमें ये सुविधा होनी चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए, ये आदर मिलना चाहिए, इतना सलाम होना चाहिए रोज रोज, हमारे नाम के पीछे ताड़ियां होनी चाहिए, 10 हार मिलने चाहिए हमें रोज। हम भक्ति की कर रहे हैं पर साथ में अनेक और इच्छाएं भी बढ़ रही हैं। तो महाप्रभु ने कहा जब ये अनवांटेड वीड्स उग रहे हैं तो हमें उन्हें एकदम उखाड़ देना चाहिए। जैसे आपके शरीर में अगर कोई फुंसी उग रही है पस के साथ तो आप क्या उसको उगने दोगे, कहोगे हाँ बड़े होते जाए मोटा होता जाए खूबसूरत दिख रही है? नहीं, आप एकदम दबाओगे कि ये बीमारी फैले नहीं, है कि नहीं? जब कैंसर होने लगता है अब तुरंत ही उसे रोकना चाहते हो कि वो, आप चाहते नहीं वो कैंसर फैल जाए। तो उसी प्रकार महाप्रभु ने कहा ये अनवांटेड बीज जो हैं इसे हमें जैसे ही ये दिखे हमें इन्हें उखाड़ना चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा, मैं तो संक्षेप में कह रहा हूं, कि जो भक्ति का सुंदर बगीचा है ये सुंदर बगीचा नष्ट भी हो सकता है। कैसे ये सुंदर बगीचा नष्ट हो सकता है? अगर एक पागल हाथी को आप छूट दे दो अंदर आने के लिए, है कि नहीं? आपके पास अच्छा मकान है, अच्छा घर है, अब बच्चों को छूट दे दो, छोटे बच्चों को खेलने कूदने में, वो खूबसूरत मकान को एकदम खराब कर देगा, है कि नहीं? तो पागल हाथी के द्वारा हाँ आपका सुंदर बगीचा नष्ट हो सकता है। पागल हाथी से क्या अर्थ है? वैष्णव अपराध। जैसे हमने उस दिन उदाहरण दिया था आपको गोपाल चपला ब्राह्मण का और अद्वैताचार्य और सच्ची माता का, जिनके हृदय में थोड़ा द्वेष था अद्वैताचार्य के प्रति। तो वैष्णव अपराधों से हमें बचना चाहिए। और आनंद बुद्धि वर्धनम, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा आप असली आनंद अनुभव कर सकते हो केवल ये हरि नाम के उच्चारण के माध्यम के द्वारा। तो ये है संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु जी की सुपर फिलॉसफी जो प्रभुपाद जी ने कहा। प्रभुपाद जी ने सुपर फिलॉसफी शब्द का उपयोग किया है। सुपर फिलॉसफी का मतलब है सब सब सिद्धांतों में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत। और हम सबका वास्तविक स्वरूप क्या है? जेरे जुबेरे स्वरूपाय कृष्णा, हम हैं सदा भगवान के नित्य दास, दास हैं और दास रहेंगे। ये नहीं आज दास है कृपा भगवान के साथ एक हो जाएंगे, जैसे मायावादियों का विचार है हम मिल जाएंगे, मिश्रण हो जाएगा हमारा भगवान के साथ, हम सदा भगवान के दास रहेंगे। तो हमें हम सबका सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी की कृपा से चैतन्य महाप्रभु जी के आंदोलन से जुड़े हैं। ये बात सच है कि भक्ति सिद्धांत जी के प्रचार से पहले, प्रभुपाद जी के प्रचार से पहले चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची थी। ठाकुर भक्ति विनोद जब वो पृथ्वी पर थे उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा है उसे वो सहाजियों के हाथ में आ गई है। और जो सहाजिय थे वो दिखावा करते थे महाप्रभु के भक्त हैं, पर लड़कियों से खेलना और हर गलत काम करना। तो ठाकुर भक्तिनो जी पहले महान आचार्य थे जिन्होंने फिर से चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा को यथा रूप में अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया। और इसलिए प्रभा जी ने कहा इन मेनी रिस्पेक्ट्स भक्तिनाथ ठाकुर इज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, कि ठाकुर भक्तिनाथ जी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को यथा रूप में प्रस्तुत किया। और फिर श्रीला प्रभा जी भक्ति सिद्धांत जी और ठाकुर भक्तिनाथ जी की कृपा से ये संदेश को ले गए पूरे विश्व के हर कोने में। और आज विश्व के हर कोने में गौर पूर्णिमा मनाई जा रही है। जैसे आज आप जगन्नाथ मिश्रा का उत्सव मनाओगे, इस प्रकार जगन्नाथ मिश्रा का उत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, सिर्फ आपके बॉम्बे में नहीं, अफ्रीका में, इधर उधर। चैतन्य महाप्रभु जी का जो संदेश है वो विश्व के हर कोने में पहुंच गया है। तो हम सबको इस अवसर पर यही प्रार्थना करनी चाहिए जगन्नाथ मिश्रा से कि वो हमें असीम कृपा दें, जिसके द्वारा हम भी चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा के साथ और गहराई से जुड़े और सदा ये हरि नाम जो है हमारे जीव के साथ जुड़े रहे। हमारा कीर्तन आदि सदा हरि। हम सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी है 16 माला करो, बाकी समय माला को जेब में डाल दो या चर्च केस में बंद कर दो या घर में छोड़ दो। नहीं, हमारा प्रयास रहना चाहिए कीर्तन आदि सदा हरि। हम सदा हरि का नाम का उच्चारण करें। और इसके लिए जैसे हम कल समझा रहे थे निम्रता की आवश्यकता है। अगर हम उस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं कि हरि का नाम सदा हमारे साथ जुड़कर रहे, तो संक्षेप में आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज जी समझा रहे थे कि भगवान जो हैं त्रियुग हैं और कलयुग में अवतारित होते हैं पर गुप्त रूप में, और इसलिए उसे कहा जाता है छनावत। ठीक है,
हरे कृष्णा।